ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ 4 சாப்டர் 27. ராஜா புரஞ்சன் கி நகரி பர் சண்ட் வேக கா தாவா ஔர் கால் கன்யா கா சரித்ர. மகர்ஷி நாரத் நே ஆகே கஹா, ஹே ராஜன், அனேக் பிரகார் சே அப்னே பதி கோ மோஹித் கர்கே அப்னே வஷ் மே கர்த்தி ஹுயி ராஜா புரஞ்சன் கி பத்னி உசே சாரா ஆனந்த் பிரதான் கர்னே லகி ஔர் உஸ்கே சாத் விஷயி ஜீவன் வியதீத் கர்னே லகி. रानी ने स्नान किया और शुद्ध वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को सुसज्जित किया. भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई. उस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली को देखकर राजा ने उसका तन्मयता अभिनंदन किया. रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया. इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार ना रहा. वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ की आयु का घटते जाना. इस प्रकार अत्यधिक मुंहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था. इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा. अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का, स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान ना रहा. हे राजा प्राचीन भर्षत, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पाप में कर्म फलों से पूरे हृदय से अपनी पत्नी के साथ भूख विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवावस्था बीत गई. तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन भर्षित को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया. हे प्रजापति राजा प्राचीन भर्षित, इस तरह राजा पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई. ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी. उनका आचरण भद्र था, ये उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी. तत्पश्चात पांचाल देश के राजा पुरंजन ने अपनी पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया. इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के कई 100 पुत्र उत्पन्न हुए. इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पांचाल देश भर गया. हे पुत्र, ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के घर, खजाना, नौकर, सचिव एवं दूसरे सारे साथ सामान समेत सारे धन संपदा को लूटने वाले थे तथा अन्य साथ सामान सारी धन संपदा को लूटने वाले थे. राजा पुरंजन का उन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था. नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन भर्षत, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ, इसलिए उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ नृशंस थे क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी. इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं से में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते. हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा था. उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं. चंडवेग के साथ साथ गंधर्वनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी और वे बारंबार इंद्रिय मुख की सारी सामग्री लूट रही थी. जब राजा गंधर्व राज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी. वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा. वह उसने अकेला ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी. चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। यह देखकर कि उसका विभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। राजा पुरंजन पांचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। हे राजा प्राचीन वर्षत, उसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह घूमती रही। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, फलता लोग उसे दुर्भागा कहते थे, किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे वरदान दिया। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था, तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी, तो उसने मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हुई और मुझे घोर शाप देने लगी। चूंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं टिक सकोगे। इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई, तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई, जिसका नाम भय था, और उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूं और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है, तो वह निराश नहीं होता। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करना। काल कन्या का कथन सुनकर यवन राज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। यवन राज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। यह संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रह कर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध से उनका संहार कर सकती हो। यवनराज ने कहा, यह मेरा भाई प्रवज्वार है, तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूँगा। हरे कृष्णा।